प्रबंधन को करते हैं। हमारे से रामानुजाचार्य के आविर्भाव बुद्धि है, उसके बारे में वहाँ से कुछ उनकी विचारधारा कुछ सुनते हैं और उनके पूरा जन्म परिचय से लेकर सब कुछ वर्णन किया है। महाराष्ट्र किसान लोग अभी शाम को सुने थे, यहाँ दिखाते हैं रामानुजाचार्य के चैत्र मास के शुक्ला पंचमी तिथि में आविर्भूत, हर चैत्र महीना शुक्ला पंचमी है। हजार साल पहले की बात है, उनके स्थिति का 1017 ख्रीस्ताब्द मतलब अब है 2000, तो मानो पूरा 1000 साल पहले, और 1017 से 1137 तक 120 साल तक रामानुजाचार्य रहे। रामानुज के पिता का नाम केशव गुप्ता, माता कांतिमती। कांतिमती जामन मुनि के पोत्री और शैलपूर्ण के ज्येष्ठा बहन। जामन मुनि वो ब्राह्मण घर के बड़े उच्च घर के जन्म, और जो इनका माता है वो भी कौन, शैलपूर्ण ज्येष्ठा भगनी और जामन मुनि के पोत्री। और शैलपूर्ण कौन थे, उनके मामा वो जामनाचार्य के शिष्य थे। रामानुज पेरम्बदूर ग्राम में 1017 ख्रीस्ताब्द में जन्मग्रहण की। पेरम्बदूर गांव के दूसरा नाम है भूतपुरी, महाभूतपुरी, भूत का पुरी, इसका नाम भूतपुरी। ऐसे उस देश के भाषा में बोलते पेरम्बदूर। जबकि शैलपूर्ण केशव के बच्चे को देखा, मतलब अपने भैया को देखा, जन्मग्रहण किया, विचार क्या करके उनका देखा ये संकर्षण शक्ति से जन्म हुआ है। हम लोग थोड़ा ज्योतिष से विचार करते हैं तो देखते हैं कि बच्चा पहले जन्म कहाँ से आया, कौन सी ज्योनि से आया है, सब कुछ विचार करते हम लोग निकाल लेते हैं। ये मन ज्योतिष का गिनती में आ जाता है, अभी कौन से वर्ण में है, कौन सी जाति में है, जन्म के समय कौन कौन से, इसके बाद इसका परिचय आखिरी क्या होगा, परिणाम क्या है, ये हम लोग अनायास निकाल लेते हैं, क्योंकि गणित से निकल जाता है। तो उन्होंने ऐसे गणित की गिनती की, देखा ये संपत्ति सुखी से जन्म ग्रहण किया, क्योंकि उनका नाम देखकर उन्होंने बताया इनका नाम लक्ष्मण ऋषिक होना चाहिए। तो रामानुज के ये रामचंद्र को अनुज, इससे उनका नाम लक्ष्मण, राम अनुज लक्ष्मण संपत्ति के अवतार। जब उसने लिखा था रामानुज के नाम से प्रतिष्ठित हुई, क्योंकि उन्हें विचार था रामचंद्र की महिमा और सीताजी की महिमा और तत्व, लक्ष्मण का दावा इतना अधिक कोई जानते नहीं थे, किंतु भाग्य का इतिहास लक्ष्मण जबकि रामचंद्र जी के कहते ही पहले उनको टैग दी थी, उनको टैग दिया, किसने टैग दिया हम लोग जानते हैं। एक दिन रामचंद्र जी के बाद कोई व्यक्ति आया विशेष बात करने के लिए, रामचंद्र बोले मैं विशेष बात करने जा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आया अंदर मत आने देना, यदि अंदर आ जाएगा तो या तो तुम जो अंदर आने दिया तो तुम्हारा या तो पान न तो या तो तुमको मैं सदा के लिए कह दूँ, तुम पहाड़ दो मैं बिचर जाकर बात करता हूँ। बात करने में इतने में दो बजे जगह हाजिर हो गए, तो मेरे राम से मिलना है, बोल मैं अभी नहीं जाना तुम्हें, जो भी जाना नहीं जो भी बोल राम का आदेश है थोड़ी देर ठहर जाइए, जो कुछ बात है मुझसे बोल दीजिए, मैं आपका समस्या का हल कर दूँ। बोल नहीं समस्या का हल नहीं हुआ, मुझे जाना है, मैं जाऊँगा, तो नहीं जान देगा तो क्या कह दिया, मैं बंद से बंदा कर दूंगा अभी शब्द मैं सुन पा रही, या तो मैं अकेला मरूंगा, मैं राम का वंश का जो नाश करूँ, राम मुझे तो कह देंगे प्राण रंग में इतना ही होगा, वंश का नाश नहीं मिलेंगे। वो बोलते नहीं, बोलते गुरु जी महाराज जी आप बैठिए, जो कुछ कहना कह दिए मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा, नहीं थोड़ा बैठिए अभी एक जन अंदर गए बात करके आएगा तभी आपको अंदर जाने दूंगा, पर देख मेरे तैरने देर में चैनल में अभी क्या करूँ जमीन लगा मुझे जरूरी क्या मैं पहुंच क्या करें। लक्ष्मण का बुद्ध करते हुए अंदर गए, स्वयं से डरते हुए भय से बीते होकर, भाई अब शेष भी जाए क्या करूँ, अंदर गया, अंदर जाते रामचंद्र जी, अच्छा मैं गुप्त बात कर रहा था तुम आ गई, क्या करो दुर्गा जी उठक करो। और दुर्गा जी ने कहा यदि मैंने जन्म लेगा बस नाश कर लो तो इसका मैं ही मर जाऊँ, मैं जो दंड होगा होगा जो मैं वंश का नाश नहीं करना है। ठीक है दुर्गा जी आना दो दुर्गा जी आए फिर महाराज ने आती क्या क्या फिर मैंने भूख लगे खाने के लिए मुझे नहीं कह सकते मैंने आपको खाने को दे सकता था। रामचंद्र जी प्राचीन व्यवस्था करता है फिर लक्ष्मण लेके क्या था ठीक है भाई तुमने हमारा आज्ञा को उल्लंघन डाक दंड है या तो तुमको मैं मृत्युदंड दिखाऊं या तुम अभी निकल जाओ मैं तुम्हारा मुख कभी नहीं देखना चाहता। लक्ष्मण ने देखा ऐसे मुंह लेकर के बच्चे को क्या लाभ है यदि राम से विमुख हो जाऊं और राम ही नहीं देखे तो तुम जा सर्दी में जाए सर्दी में जाकर के पानी में खड़े होकर के इतना पानी में है राम का स्मरण करते करते अपना सब फट गया शेष नागर चक्कर से चले गए लक्ष्मण जी समा गए शंकर से नहीं निकल गए। जब से उनके मन में बहुत ही खेद था मैं राम की लक्ष्मण की लक्ष्मण होकर के राम का कोई सेवा नहीं कर सका पिता जी की सेवा नहीं कर सका कहाँ से दुर्वासा दुर्वासा आ गया ये दुर्वासा जहाँ पहुंचा ना दुर्वासा सब दुर्वासा कर दी असरा में हमारे महाराज जी ऊपर कैसे आगे चल पड़ा ये दुर्वासा इस दुर्वासन को किस महाराज जी के समूह में फटके दुर्वासा दुर्वासना पता के लिए अंत कर रहे हैं बताने क्या है दुर्वासना इतन लेकर भी सुखी नहीं है करोड़ रुपया ले लिया तभी सुखी नहीं है और क्या चाहते पता नहीं ना ही पूरा महाराज को लेकर छोड़ेंगे भगवान मेरे को बहुत दुख होता है इसमें जल जाता है मैं क्या करूँ दुर्वासना कहाँ से उसको देखो लक्ष्मण सबसे दुखी थी जब इतने दिन बाद सीता गया द्रापर गया तब आपके हजार साल पहले वही लक्ष्मण देखी संकर्षण के अवतार आज आकर के जन्म लिया उनका नाम जबकि लक्ष्मण रसिक भी रखा राम गरुड़ होने के नाते उनका नाम रामानुज भी रखा। सामान्य भाषा में उनका गौरवमय परिचय क्या दिया इलाया पेरुमल उनकी भाषा ही ऐसा है तो उनका नाम था पेरुमल इलाया पेरुमल मतलब भाई अलवर बड़ा भारी भगवत अवतार। तो आपसे जगह जन्म और महीना कौन सा था ये सब दे रहे हैं अच्छे जगह आवेदनों के तिथि और महीना का विचार करके देखा जाता है उसके लिए कुछ आलोचना कर रहे हैं कौन हमारे पास गुरु महाराज क्या
रामनवमी
पहले राम का आविर्भाव होने के बारे लक्ष्मण नहीं आए तो राम का आविर्भाव कैसे सुंदर होगा आप लोग का विचार ठीक नहीं है। स्वामी जी महाराज जी ने विचार दिया है कभी सुने हैं आपने यदि कोई छोटा है जन्म लेता है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है उन्होंने विचार दिया है पता है क्या विचार दिया
जो पहले आता है वो छोटा
होना अब जो पीछे आता है तो फिर कौन छोटा है फिर राम छोटा है लक्ष्मण बड़ा है बोलो राम बड़ा है कि लक्ष्मण बड़ा है जो पीछे आता बड़ा है कि आपके आपके दृष्टि के अंदर आप ही अब झुक नहीं होगा जुड़वे तो था ये तो जुड़वा ही था
सब एक तो प्रसन्न
नहीं उससे क्या है एक माँ का दस माँ जुड़ गए उससे क्या हो गया वो तो देखो का चलो तो उनको मिला ना वहाँ तो देखो कि चलो तो विचार होता है जो पहले आ गया छूटा आ गया जो पीछे आया बड़े हुए तो विचार है गुरुवर्ग का विचार है इसलिए बताते हैं यहाँ किन चीज आलोचना करना है क्या रामानुज विशिष्ट का प्रतिवादी थे विश्व वैष्णव पंचरात्र के अनुवर्तन फर्स्ट पंचरात्र में ऋतु महीना तिथि बार इसकी ये इस परिवर्तन वैष्णव के निमित्त ये नाम दिया है फर्स्ट पंचरात्र में जैसे अभी चैत्र महीना है हमारा वैष्णव के ये महीना का नाम चैत्र नहीं है क्या महीना है मधुमान अगला अगला आएगा माधवमान उसके बाद आएगा विष्णु मतलब एक महीने का नाम भी अलग है तिथि भी अलग है बार भी अलग है तब ये लोग कैसे मिलता नहीं तो बताया तो हस्तिनापुर वहाँ नवद्वीप पत्रिका में ये सब चीज वर्णन दिया विष्णु बसंत ऋतु के नाम छह ऋतु का नाम भी अलग अलग है ऐसे हमारे यहाँ ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत तीसरे बसंत उसमें ग्रीष्म ऋतु का नाम बसंत ऋतु का नाम विष्णु और पंचमी के ऋतु का नाम शिदर आता है जब माधव ऋतु में विष्णु महीना में सिद्ध में जन्म ग्रहण किया। विष्णु मास में जन्म ग्रहण करने से विष्णु पूरी रामानुज विष्णु चतुर्थ प्रदान का अनुसरण करके विष्णु पुराण विष्णु पुराण के द्वारा शुष्क ज्ञान विनय के लिए विष्णु का अवलंबन करके विष्णु पूजा ही प्रतिष्ठित किया। रामानुज संप्रदाय विष्णु पुराण की बहुत मान्यता है, संप्रदाय में विष्णु पुराण की अधिक मान्यता है। विष्णु पुराण के अलावा लोग कुछ अधिक अधिक नहीं मानते और उनके अनुजाई करते हैं। विष्णु की मान्यता है, विष्णु पुजाई श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए ये माता भगवंत मधु में चैत्र मास में मधु मास में मधुर कवि मधुर कविता लिखने वाला क्या होगा विश्वास के आचार्य विष्णु भगवान की अवतीर्ण। आज जीजी कृष्ण का जन्म 3242-43 साल के पहले रामानुज का ये विचार में आकृष्ट होकर के हमारा उपासना का ध्वंस कर दी। बताते हैं रामानुज के आने के पहले भी विष्णु भगवान की जन्म हुआ और विष्णु भगवान उससे पहले भी शिक्षा दर्ज विवाद का प्रचार किया था और करके समस्त मत को खंडन कर दिया। अलवराचार्य हुए तो फिर वो शांत हो गया था। रावण की जन्म तिथि पंचमी क्या क्यों है, इसका नाम पंचमी तिथि श्रीधर तिथि। रावण श्रीधर तिथि में आविर्भूत होने के कारण है क्या सिंह धारण करने वाला कौन है, श्रीधर जी को जो धारण करते सिंह को धारण कौन करते, सिंह मतलब लक्ष्मी, सिंह मतलब शोभा, सिंह मतलब शोभा सौंदर्य, सिंह मतलब धनदौलत, सिंह मतलब समस्त गुण होते हैं। रामानुजम शिक्षक रामानुज शिक्षक लक्ष्मी देवी के प्रधान नारायण के सेवक है, नारायण के प्रधान सेवक। इसे रामानुज संप्रदाय में सेवक का आचार्य होते हैं वो शिक्षक जी के भूमिष्ठ होने कारण उनका नाम का शास्त्र घटक है। शिक्षा तिथि श्री को धारण करने वाला धारण करके लक्ष्मी के कुलखंडन में आए, इसलिए सिख संप्रदाय के निष्ठा का आचार्य के रूप में ये पंचमी तिथि सिद्धार्थ तिथि में आविर्भूत हुई। अच्छा, अब आचार्य के आविर्भाव काल की अवस्था वर्णन कर रहे हैं, उसमें आविर्भाव अवस्था कहेगा तथा भारत में धर्म के लिए विख्यात है, धर्म भारत का जीवन है, ये भारतवास की इससे चिंता में सब समय गंभीर निमग्न रहते हैं तो इसमें शांति इसमें सुख है। इससे चिंता को छोड़कर के और दुनिया की चिंता करने से व्यक्ति कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इससे चिंता ही भारतवासियों को प्रधान ऋण है। उससे भगवान के प्रति आस्था संपन्न वेद वेदांत पंचरत्न पुराण किया स्मृति महाभारत शास्त्र की पूजा करना और उनका दान करना यही कराल काल के चक्र से बचने के उपाय है, नहीं तो काल के हाथ से कोई नहीं बच सकता। अर्थात काल के हाथ से कैसे हम बचे हम समझेंगे, हमारा विजय प्रश्न प्रसन्न रहेगा क्योंकि ऋतु का कार्य का सुख और सचुन का हम अभिभूत नहीं कर सकते, पीड़ित नहीं कर सकता। जब हम भगवान का नाम गुण लीला चिंतन करेंगे स्मरण करेंगे सदाई हम प्रसन्न रहेंगे। और जो लोग भगवान को छोड़ करके दूसरे वस्तु के द्वारा अपने प्रसन्नता की कोशिश करते हैं तो सदा ही दुख का समुद्र में निमग्न है, उसको सुख शांति की नीचा कभी भी नहीं मिलता है, चाहे दारू पी ले चाहे दवाई पी ले, चाहे दरवाजा में रहे चाहे अंदर मान में रह जाए, चाहे बागान में जाए चाहे बगीचे में जाए, चाहे समुद्र में गोटा लगाए चाहे नदी में गोटा लगाए, सुखी कभी नहीं हो सकता है। एकमात्र भगवान के गुणगान सवर्ण और कीर्तन के अलावा स्मरण और अनुकिरण के अलावा धारण और धारणा के अलावा कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। इसे भारतवर्ष का सबसे बड़ा भारी सुखी और समृद्ध और शांति का देश है, सारा विश्व यहाँ पर आकर के शांति के पीछे कहते हैं जिसके मन भारत के ऊपर बड़ा भारी सभा का सूर्य अस्तमित होते हैं भारत के आकाश में नास्तिक आकर के चारों तरफ घेर लेते हैं और मनुष्य का हृदय कपटता से भर जाता है, संदेहवादी हो जाता है, विश्वास नहीं कर सकता गुरु को और संतों को, तो कहीं भी धोखेबाज है। यदि मेरा कमाई को खाने के लिए मेरा सर पर हाथ फिर करके काम करा करके जादू और सुना संक्रमण से कवच करके अपने चुंबन में फंसाने के चक्कर में ये लगे हुए हैं, काम करेंगे नहीं मस्ती से खाएंगे और हमें नौकर बना के रखेंगे, ऐसे भी संदेह और कपटता की स्थिति में आ जाता है कोई व्यक्ति काल के कारण चक्र के वो शक्ति में टूट जाता है। हम संदेह यदि होंगे तुम इसको पटोगे और सबसे परोपकारी होंगे, शांति प्रदान करने वाले खुद शांत होंगे, खुद शांत नहीं है तो क्या शांति नहीं, नहीं तो मांगने खाने वाला होगा, तो साधु संत तो मांगने खाने वाला नहीं है, वो तो किससे मांगेगा, दुनिया से मांगेगा, दुनिया से लेने के लिए है, है साधु मांगते हैं, क्या मांगते हैं, अनर्थ पाप मन्नता कपटता कुटनीति है दुर्दैव अनर्थ, हमारे दुख हमारे दारिद्रता हमारे अंदर कमियां मांग लेते हैं और भर देते हैं भर देते हैं, किंतु जो मांगने खाने वाला पेट पालने वाला ऐसे वो साधु नहीं कहा गया, साधु कहा गया, इससे बताते हैं जिससे हमारा भारतवर्ष का आकाश गगन में ऐसे संदेहवाद निरसनवाद और कपटता खा जाते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, या तो खुद आदमी देते हैं, या तो अपने सबसे संबंधित कभी आचार्यों को भेज देते हैं, कभी अपने प्रिय परिकरों को भेज देते हैं, जाओ ये भारतवर्ष हमारा अपना स्थान है, हमारा हृदय हमारा इच्छे से तैयार किया मैंने, जाओ इन सभी को मिटाना नहीं है, इसे अंकित करके समस्त जीवों के हृदय को निर्मल करके और उनको सत्य देकर के हमारे चरणों के उदार के द्वारा उनको सावधान करना है, इसे खींचना है आगे लाना है, इसके कारण भगवान ऐसे व्यवस्था करते हैं, कहते हैं कभी जो शिष्य व्यायाम के द्वारा संत ये काटा, इसके द्वारा लोग क्या हो जाते हैं, बैठित हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, भगवान को छोड़ करके अपने इंद्र तर्पण के आतंक में जमाता है वही दुखी होता है, वही विरक्त भोग करना चाहता है, इसे वैश्विक सर्व दक्षिण की जगत का जगत तेना सबसे ना गुंजीदा वहां पर चिंता न, जो कहता है इसे वैश्विक सर्व जो कुछ है मेरा है लाओ मैं वो करूंगा, वही व्यक्ति दुखी होता है, कांटा कांटा सीखता है, दरकता है, दिल में करता है, और जो व्यक्ति समस्त वस्तु को भगवान के समझते हुए भगवान के समान समर्पण करके उनके प्रसाद दिया उनके चौकीदार और उनके घर के पैरदार की तरफ अपने बने बैठते हैं, सब उनके सेवा में स्मरण में तन्मय रहता है, उनको कभी दुख नहीं आ सकते, हम लोग जहाँ थोड़ा सा अलग हो जाते हैं हमें चटनी पीस देते हैं, एक बात है चटनी पीसती है सबको पीटते है, अभी तो चटनी जो डंडी है ना डंडी के चारों तरफ जो गेहूं और चावल लग जाते हैं उसको नहीं पीस पाते, वो साबुत की साबुत बैठा रहता है, तो चटनी पकड़ लिया ना वो रीढ़ को पकड़ लिया, और जो रीढ़ को छोड़कर मेरे को छोड़कर के चटनी के अंदर चला जाए पीस करे सब तो बाहर जाता है, जिससे भैया भगवान को छोड़ूंगा एक को छोड़ूंगा, अब एक चटनी में पीस करके सबसे बाहर चले जाएगा, यही मारे कहते हैं हम परमात्म जो कहता है, जो कहता है जगत मिथ्या है असत है, ऐसे व्यक्ति विकसित होकर के तीन तरह राक्षस उसको ग्रास कर लेता है, और ग्रास करने से उनको गुरु के प्रति श्रद्धा नष्ट, माता पिता के प्रति श्रद्धा नष्ट, भाई बहन के प्रति श्रद्धा नष्ट, प्रति नष्ट, सब कुछ उससे नष्ट हो जाता है, क्योंकि तुम तो ब्रह्म हो मैं ही ब्रह्म हो, तुम जगत में झूठ असत होता क्या है, जो कुछ करो ऋण करके जी जाओ, जब जीवन सुगम जीवे ऋणम जीवे बस में बुद्ध से देव तो पूरा पंडा रखो, जब तक जियो तो रिंजन खाओ खूब मोटा पैसा बन जाओ फूल के सुख का, मर जाएगा तो कोई भी बने आएगा उसने किसको देखा मोह उसके बाद आएगा, जो क्या गलत माता आने वाला व्यक्ति हो उससे नहीं, इसलिए वो लोग माता पिता का आदर नहीं करते, गुरुजनों का आदर नहीं करते, वो लोग विक्षिप्त होते हैं, खुद ही कमर अच्छा हो जाते हैं, और खुद ही मायावाद से अत्याचार से उत्तृंखल ताप से और नर हत्या कर्ण में निर्भय प्रणाली में निर्लज जवाब हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड नहीं प्रभु नहीं भगवान क्या है चोरी करने में डर गया है, निश्चय को हरण करने क्या करें, रावण की तरह बुद्धि हो जाता है, जो भोग बात बुद्धि बनता है जब उसको भोग करने की इच्छा करता है तो रावण की तरह सब इच्छा करके आराधना करे, जो हमारा पुष्टि हो गया हमारा शरीर अच्छा रहे हमारा मन अच्छा रहे भवन हमारा आ जाए हमारा जोगर रह जाए हमारा स्त्री सुंदर ही रहे नहीं तो दुनिया की भरे को फल कर रहा है, ऐसे विचारवादी भोगवादी वो निर्लज जब रहे और गुंडा डाका कर भगवान करा रहा उनके पास में कुछ और शांति की रास्ता नहीं, फिर भी शांति नहीं पाता है, इसे कहते हैं ऐसे पैसा की तांडव मित्र के द्वारा घर की उद्विग्न हो जाते हैं, और अब इसके बाद के कारण लंबवाद के कारण जब पैसा की मित्र होता है तो रामन जैसे जो उस समय रामचंद्र जी पिता भाई सबको शांति देने के लिए ऐसा प्रसंग में रामन की चरित्र श्रीमद रामकृष्ण स्वामी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अभी हम लोग उसका विचार करेंगे। आप तो घंटी बज गया, कल से हम लोग ये सब विचार करेंगे। सुंदर सुंदर कई दिन आदमी का जीवन काल धर्म बन गई। शंकर शंकर ने क्या किया था, चारों भेदों के दुरुस्त करके सन्यासी वेदारी इंद्र पर्वत समाज को क्या किया, समस्त में डाल दी। शंकर का दोष नहीं था। शंकर कहते बेटा अभी तरह के लोग भगवान का उपासना करते हैं, उपासना क्या मानते हैं, लक्ष्मी भगवान की उपासना करके बोले मेरे को लक्ष्मी दे दो। भगवान को नहीं कहता, अरे प्रभु रहे तो लक्ष्मी रहेंगे, नहीं मेरे को लक्ष्मी दे दो। और भगवान से अलग करके लक्ष्मी को गणेश के साथ बैठना चाहता है, अगर उसके प्रवृत्ति दे दोगे, किंतु डर के मारे गणेश के साथ तो बैठा नहीं सकते, माया करो पहले कर बैठा जाए, किंतु भगवान को नहीं बैठा था, लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करेगा दिवाली के दिन, दीपावली मनाएगा तो किसको बैठेगा गणेश। भाई बाप रे तुम्हारा हिम्मत कैसा है, नारायण के लक्ष्मी है और उसको गणेश के पास में बैठाओगे, डरते नहीं है, डरते नहीं है, और तुम्हारा हिम्मत है तो लक्ष्मी नारायण की सेवा कर पूजा कर बैठा उनको, नहीं नारायण के बैठाऊंगा तो पूजा करना पड़ेगा, उपासना करना पड़ेगा, हाथी जोड़ा गणेश कोई चिंता नहीं करेगा, पेट में बहुत बड़ा पेट है, एक जो लड्डू खिला दे तो खुश हो जाएगा, और नारायण से सम्मान है जो हमारे घर को पूरा खा दे तो क्या करूंगा, नारायण तो अकेले नहीं है इसके लिए अपने बहुत सारे हैं उनके, और गणेश तो अकेले है चिंता नहीं लड्डू देने से भूख, और उनके पूजा है एक जगह बैठा तो कोई जा नहीं सकता है, बैठा जाएगा हमारे घर में, और नारायण तो उड़ कर बोल के साथ बन जाएगा खा पी करके, विश्वास नहीं है उनको, जैसे जगह लक्ष्मी को लाओ और बैठा दो कहाँ पर तभी तो बोल रहे हैं नहीं शक्ति ही दुर्गा गणेश और ये पांच जो उपासना है पंच उपासना ये शंकर गर्ज ने क्या किया, क्योंकि इन जो लोग हैं दुष्ट लोग हैं उनको वंचना करना झगड़ना, भगवान ने कहा हे शंकर इधर क्या तो बोले इन लोगों को ठगो क्यों, पर ये मेरा लक्ष्मी भी चाहता है और मेरे से अलग करना चाहता है, और क्या भगवान को मार दो लक्ष्मी को अलग दो, लक्ष्मी हमारे पास है, नारायण है तो लक्ष्मी को भोग करेगा और लक्ष्मी हमारी की बात करेगी, इसे लक्ष्मी हमारा होना चाहिए, नारायण को भागो, ऐसा करो इन लोगों को बोल दो नारायण दान भगवान भगवान कोई नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी कोई नहीं, तुम ही ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूँ, सर्वम खलोहितम ब्रह्म आम ब्रह्म मैं भी ब्रह्म तुम ही ब्रह्म सप्तमती तुम ही हो ज्ञान ब्रह्म, ज्ञान हो जाने तो कुछ नहीं रहता, ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है, ऐसा कुछ ठीक है, और जो ऐसे सोचने लगे कि शंकर जी बोले मैं कहते कहूँ कि सारा दुनिया ब्रह्म है, मतलब जब कि भगवान रह गए नहीं, मैं भी भगवान हूँ आप भी भगवान है, आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, तो कौन किसी की उपासना करेगा, इसलिए शंकर जी बोले मैं कहते कहूँ ऐसा उन्हें करना है तुमको, मेरा आदेश पालन करना है, सब भगवान के आदेश में ब्रह्मा जी ने शिव जी ने ऐसा ब्रह्मवाद फैला दिया, फैला करके असुरों को वंचित कर दिया, अब असुरों कोई नहीं किसी उपासना करता है, किसकी उपासना करे, मैं ही ब्रह्म हूँ तुम ही ब्रह्म, कौन किसके मंत्र जप करेगा, कौन किसकी उपासना करेगा, कौन किसके मंदिर में जाएगा, कौन क्या करेगा, ज्ञान हो गया तुम ही ब्रह्म मैं ही ब्रह्म, बस ये शंकराचार्य जी जब की कर दी तो उस समय सप्त धातु में दीक्षा पुत्र भाई जन्म मृत्यु जलवायु निवास भूमि संकीर्ण दृष्टि और जो अनस्थ जीवन और अनभिज्ञ अकृत बुद्धि मनुष्य क्या किया, क्या फिर किया, ब्रह्म कौन है, ब्रह्म तो सज्जी नहीं कुछ भी नहीं, निराकार निगरी से नहीं गोल अद्वय अनादि ब्रह्म का स्वरूप में हम सभी ब्रह्म है, सूर्य तो बड़ा प्रकाशित है, दस थाली में पानी है दस थाली में चमकते हैं, और थाली का पानी हटा दो तो सब एक हो जाता है मिलकर, ऐसे हम लोग कोई भी कुछ नहीं है सभी ब्रह्म है, जब बिल्कुल फिर वर्णराज जी पूजा पाठ और सीता के द्वारा किंतु पहले भी गुरु सेवा करते थे इधर प्रकाश था, फिर भी सीता प्रकाश सेवा में लगते प्रकाश तो जल इच्छा से करते थे, कुछ दिनों में सामने को जाए प्रतिभा से उनको शिष्य बना लिया,
बदले के लिए
शिष्य बना लिया, बदले के लिए उनको शिष्य बना लिया, हमारे जी ये सब हम लोग सुने हैं, टाइम कितने है,
8 बजे तक।
क्या बोल रहे हैं इसलिए पाप पुण्य होना चाह व्यभिचार सत्य मिथ्या सब कुछ ऐसे फैला दिया ये शंकराचार्य के विचारों से सब ब्रह्म हो गए क्या है ब्रह्म है तो मानव मन क्या होता है सभी ब्रह्म तब ये पूछा कि सिद्धांत हो जब मैं ब्रह्म हूँ मैं जो कुछ करूँ मेरे को डांट तो लगेगा नहीं सोचो मैं ब्रह्म हूँ इसलिए बोलते ये पूछा कि सिद्धांत हो दुष्प्रेतों का सिद्धांत लेकर के सर्वनाश कारण हो गया और जगत का सर्वनाश का विलंब नहीं है मुझे अद्भुत बात की मूल उद्देश्य को समझ नहीं पाए और की हिंसा देश अवृत्य का स्थापन होने लगा सुख शांति सब लुप्त हो गया इस अभाव को दूर करने के लिए ये महापुरुष का आविर्भाव है अब आविर्भाव होकर क्या क्या किया तो हम लोग काल से एक दिन समय हम लोग का ये पुष्पांजलि हो उनके जो विशिष्ट के बाद अभी जब आप विशिष्ट विभिन्न भगवान का विशेष नहीं है भगवान सुंदर निराकार नहीं है उनका साकार भी नहीं है सगुन भी नहीं है और प्राकृत गुरु प्रतिष्ठित है कोई कहे कि भगवान सगुन है साकार है तो ऊपर कल्पना है और बोझ का निराकार है तो मूर्खों का जहाज है सरदार है तो न तो भगवान सगुन है न साकार है न निराकार है न निर्गुण है वो सबसे अपने रूपों में प्रतिष्ठित है कोई उनको न तो साकार स्वरूप बना सकते कोई निराकार और निर्गुण बना सकते वो मूर्ख का कल्पना मत करें क्योंकि शब्द का विन्यास से भेज दे तो कहता है सगुन साकार किंतु भगवान प्रकाशित गुरु में सदा ही प्रतिष्ठित है वो नित्य अपने धामों में है नित्य विराजमान है इसका प्रमाण विचार सब हम लोग सुनेंगे धीरे धीरे भगवान का